शांति। संगम युग खुशियों का युग है। हमें बाबा मिला है तो हमें सच्ची खुशी के बारे में पता है। दुनिया में भी लोग खुश रहने के लिए अलग अलग प्रयास करते हैं, खुशी प्राप्त करते भी हैं, लेकिन उतनी ही देर जितनी देर जीभ पर स्वाद रहता है, फिर खुशी गायब हो जाती है। खुशी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन सा है? चिंता। कोई खुशी की बात सुनी, मन बहुत खुश हो रहा है, हम खुशी से किसी से बातचीत भी कर रहे हैं, अचानक मोबाइल में घंटी बजती है, हम उसे रिसीव भी नहीं करते, लेकिन नाम देखते ही हमारे चेहरे का रंग भी उड़ जाता है। अरे ये कहां इसका फोन आ गया, मन में एक चिंता हो जाती है। और जैसे ही चिंता होती है खुशी जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो जाता है, ऐसे हमारे चेहरे से खुशी गायब हो जाती है। मन में तुरंत जैसे अंदर कोई ऐसा सेटिंग है जो खुशी उड़ जाती है और चिंता घर कर जाती है। जीवन में हम प्रतिदिन देखते हैं, डेली लाइफ में भी देखते हैं कि अचानक कोई ऐसी बात आती है और मन में प्रश्न होता है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा इसने क्यों किया, इस प्रकार के प्रश्न पैदा होते हैं। और जैसे ही वो प्रश्न पैदा होते हैं और खुशी को जैसे ग्रहण लग जाता है और खुशी उड़ जाती है, जबकि परमात्मा पिता ने हमें सदा खुश रहने के लिए आज्ञा भी दी है, वरदान भी दिया है, शक्ति भी दी है और ज्ञान भी दिया है, जिस ज्ञान को समझकर हम सदा खुश रह सकते हैं। तो हम सब सदा खुश रहना चाहते हैं ना? थोड़ा थोड़ा कभी कभी वाला या सदा खुश? सदा खुश। अच्छा चलिए, सदा खुश रहना तो चाहते हैं, सदा खुश रह पाते हैं, क्या कहेंगे चार्ट? प्रैक्टिकल चार्ट बताना। सदा खुश रह पाते हैं? नहीं रह पाते। माना खुशी का चार्ट ऊपर चढ़ता है, फिर ऐसे आ जाता है, फिर ऐसे चढ़ता है, अप्स एंड डाउन्स चलता रहता है खुशी का। और उसमें आप थोड़ा सा गंभीरता के साथ बैठकर इसका चिंतन करेंगे तो आप पाएंगे कि हमारे मन में जो ये प्रश्न उठते हैं ना, क्यों, क्या, कैसे, किस लिए, कब, किसने, ये सब जो प्रश्न उठते हैं यही हमारे खुशी के ग्राफ को नीचे लाने वाले होते हैं। चलो हमें पता भी लग गया कि ये प्रश्नों के कारण खुशी का ग्राफ नीचे आता है, तो क्या ये संभव है कि ये प्रश्न नहीं उठे? ये संभव है कि प्रश्न उठे ही नहीं? हम घर संसार में रहते हैं, सारा दिन कारोबार में रहते हैं, परिवार के बीच रहते हैं, मित्र संबंधियों में रहते हैं, बिजनेस में रहते हैं, कलयुग का समय चल रहा है दुनिया में, तो हमारे लिए संग्रम युग है, दुनिया में तो कलयुग का समय है सब जगह, तब क्या ऐसा संभव है कि ये प्रश्न हमारे मन में उठे ही नहीं? ऐसी स्थिति बन सकती है? क्या कहेंगे? मैं यहां क्लास नहीं करा रहा हूं, चर्चा कर रहा हूं आपके साथ। जब ये प्रश्न ही नहीं उठे मन में, प्रैक्टिकली लाइफ में रहते हुए, बहुत अच्छी बात बताई आपने, लेकिन ये देखा है मैंने, अपना चार्ट देखा है। अभी चलो आप सब गृहस्थ में रहते हैं, हम समर्पित हैं, लेकिन हम आपसे बड़ी गृहस्थ में रहते हैं। मधुबन तो बड़ी गृहस्थ है ना, सबसे बड़ी गृहस्थ है, 2-3 हजार भाई बहनों के बीच सदा रहते हैं। तो हमने तो ये देखा है कि प्रश्न तो उठते हैं, प्रश्न नहीं उठते हैं ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा कि प्रश्न नहीं उठते हैं, प्रश्न तो उठते हैं, दिन में कई बार उठते हैं। परंतु जैसा बताया कि ड्रामा का ज्ञान, जब ड्रामा का ज्ञान हमें स्पष्ट होता है, स्मृति में होता है, स्वरूप बन गए होते हैं हम उस ज्ञान के, तब वह प्रश्न उतनी ही देर हमारे मन में रह पाता है जितनी देर पानी पर लकीर रहती है, उतनी ही देर मन में रहता है। लेकिन उसके लिए ड्रामा के चार पिलर्स वो मजबूती से हमारे मन में, स्मृति में, स्वरूप में फिक्स होने चाहिए। जैसे आप चेयर पर बैठे हैं तो उसके चार पिलर है, वो पिलर अगर मजबूत हैं, एक समान है, तो आप बिना हिले डुले, बिना हलचल में आए, आप वहां निश्चिंत होकर बैठ सकते हैं। लेकिन अगर उन पिलर में अगर थोड़ी भी ऊंचाई नीचाई है, कमजोरी है, तो मन में सदा रहेगा अरे कहीं गिर नहीं जाए, वो चिंता रहे। तो ये ड्रामा के चार पिलर्स हैं जो हमें इन प्रश्नों के पार ले जा सकते हैं, और जब प्रश्नों के पार जाते हैं तो प्रसन्नचित हो जाते हैं। तो उन चार पिलर्स को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि वो चार पिलर्स कौन कौन से हैं। दीदी कितनी देर तक हम यहाँ बैठ सकते हैं? ठीक है, तो हम चार पिलर्स के बारे में थोड़ा सा विचार करते हैं कि वो चार पिलर्स क्या हैं, और उसकी हम स्मृति कैसे रखें, स्वरूप कैसे बने, और प्रश्नों के पार कैसे जाएं। पहला पिलर है, ये ड्रामा की चार विशेषताएं, इन चार विशेषताओं पर हमें अपने बुद्धि को कन्विंस करना है, क्योंकि जब बुद्धि कन्विंस होगी तो वो मन को समझाएगी कि हाँ ये ऐसा है ये वैसा है। तो बुद्धि को कन्विंस करना है, तर्क के साथ अपने को स्वीकार करना है अंदर। स्वीकार नहीं करेंगे तो ऊपर ऊपर से वो बात मन में रहेगी, लेकिन वो स्वरूप में नहीं आ सकेगी। स्वरूप में वही बात आती है जिसे बुद्धि स्वीकार कर लेती है कि हाँ ये ठीक है, 2+2=4 है, मतलब ये बात ठीक है। ऐसा जब मन में निश्चय हो जाता है बुद्धि में, तब वो मन को भी समझा देती है और शांत कर देती है कि नहीं ये ठीक है, ये जो कह रहे हैं वो ठीक है। तो ड्रामा की पहली विशेषता है कि ड्रामा फिक्स है। आपने तो मुरली रोज सुनते हैं, और बाबा जो है मुरली में कितनी बार ड्रामा की इस विशेषता को बताया है कि ड्रामा फिक्स है, ड्रामा फिक्स है। तो फिक्स का मतलब क्या होता है? इंग्लिश वर्ड है फिक्स। फिक्स का मतलब क्या है? जो स्थाई हो गया है उसको हम फिक्स कहते हैं, स्थाई है। जैसे हम इस हॉल में बैठे हुए हैं, इस हॉल में ये दीवार बनी हुई है, स्थाई है, फिक्स है। ये दीवार बनी है, स्थाई है, फिक्स है। ये दीवार बनी हुई है, फिक्स, ये सब फिक्स है ना। ये फ्लोर है, फिक्स है, ये सब फिक्स है। दरवाजे जो हैं वो खुलते हैं बंद होते हैं, वो रास्ता है। अगर हमको इस हॉल से बाहर जाना है तो हम क्या यहां जाके टकराएंगे, यहां टकराएंगे, या यहां टकराएंगे? क्या टकराएंगे हमको बाहर जाना है तो? क्यों? क्यों नहीं टकराएंगे यहाँ जाके? क्योंकि हमको ये पता है, बुद्धि में ये मालूम है कि ये फिक्स है, ये हिलने वाले नहीं है, यहाँ से हम नहीं जा सकते हैं। ये भले ये शब्द हम उस समय याद नहीं करते हैं कि भाई ये दीवार फिक्स है इसलिए यहाँ नहीं जाने का, क्योंकि वो तो अभ्यास हो गया है ना, इसलिए मन में वो याद नहीं आता है उस समय। लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन माइंड में ये प्रोग्रामिंग हो चुका है कि भाई ये फिक्स है और यहाँ से हमको नहीं निकलना है, यहाँ से निकलेंगे तो टकराएंगे, चोट लगेगी, इसलिए यहाँ से हमको नहीं जाना है। ये हमारे अवचेतन मन में फिक्स है। तो हम क्या करेंगे? जहां पर रास्ता है वो ढूंढेंगे, ढूंढ के उस रास्ते से हम बाहर जाएंगे। अब चूंकि यह स्थूल है, इन आंखों से दिखाई दे रहा है, इस कारण से थोड़ा उसको स्वरूप में लाना सहज हो गया। लेकिन वही चीज सूक्ष्म है, ड्रामे के फिक्स होने का ज्ञान सूक्ष्म है, सूक्ष्मता से उसको याद रखना पड़ता है, स्मृति में लाना पड़ता है, निश्चय के आधार पर उसको पक्का करना पड़ता है कि बाबा कह रहा है कि ड्रामा फिक्स है मतलब फिक्स है। तो उसको जब हम इस प्रकार से पूरा स्मृति में ला के पक्का कर लेते हैं तब वो स्वरूप में आता है। कच्चा होता है तो फिर क्या होगा? अरे ऐसा उसने क्यों किया, फिर वो आ जाएगा। ऐसा कैसे हो गया वो प्रश्न आ जाएगा। लेकिन अगर है कि भाई ड्रामा फिक्स है तो क्या कहेंगे? नथिंग न्यू। तुरंत बाबा की ज्ञान की पॉइंट क्या टच होगी? नथिंग न्यू। कल पहले हुआ था, अभी भी हो रहा है, इसलिए इसमें कोई बात ही नहीं। ठीक है, हमको सुविधा नहीं मिल रही है या हमारे मन की बात नहीं हो रही है, लेकिन जो हुआ सो फिक्स है और यही सत्य है और इस सत्य को स्वीकार करना है। एक बार आदरणीय रमेश भाई जी, जो हमारे मुख्य ट्रस्टी भी थे और यज्ञ की सेवाओं के आदि रतन थे, वो मम्मा के पास बैठे थे, आबू में आए हुए थे और मम्मा के पास बैठे थे और कोई विचार विमर्श चल रहा था। उस समय एक समर्पित बहन आई मम्मा के पास और आके कहा, मम्मा, मम्मा को समाचार सुनाया, जो स्थान पर वो सेवा में थी वहां का कोई समाचार सुनाया। वो समाचार थोड़ा अप्रिय था पर मम्मा को सुनाना था, इसलिए उन्होंने सुनाया कि ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा हो गया, फिर ऐसा हुआ, जो भी था वो समाचार सुनाया। तो मम्मा ने उसको कहा कि ठीक है बहन, अभी जो हो गया वो सत्य है, इस सत्य को स्वीकार करो और आगे बढ़ो, अब इसको चिंतन में नहीं लाओ ज्यादा, फुल स्टॉप लगाओ और इस सत्य को स्वीकार करो। ऐसे मम्मा ने उसको शिक्षा देके वहां से विदाई किया। जब वो गई तो रमेश भाई ने मम्मा को पूछा कि मम्मा, जो बहन ने जो समाचार सुनाया, वो समाचार में तो उन्होंने सुनाया कि कैसे वो झूठ हुआ पूरा काम, जो बात हुई वो झूठ हुई पूरी, वो सेंटर के लिए भी अच्छी बात नहीं थी, यज्ञ के लिए भी अच्छी बात नहीं थी, उसके समर्पित जीवन के लिए भी अच्छी बात नहीं थी, एकदम झूठ बात हुई, झूठा ही झूठ से सारा वो व्यवहार हुआ, फिर आपने इस बहन को ऐसा क्यों बोला कि ये सत्य है और इसको स्वीकार करो और आगे बढ़ो, इसके पीछे क्या राज है वो आप हमें बताइए। तो फिर मम्मा ने कहा कि रमेश जी, जब हम कुछ कारोबार कर रहे होते हैं, व्यवहार कर रहे होते हैं, तो उस समय हमें पुरुषार्थ करना होता है और उस पुरुषार्थ से हम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन जब वो घटना घट जाती है कि वो चीज हो गई, हो जाने के बाद ड्रामा कहके उसको फुल स्टॉप लगाना होता है और वही सत्य है। वो इसलिए सत्य है कि कल्प पहले भी वही हुई थी, अभी भी वही हुई है और आगे भी वही होनी है। तो सत्य और असत्य में फर्क क्या है? असत्य मतलब जो बदलता रहता है वो असत्य है, और जो स्थाई है वो सत्य है। ये शरीर असत्य है क्योंकि ये शरीर बदलता रहता है। पहले 1.5 फीट का था, अभी 6.75 फीट का हो गया है, ये असत्य है। तो जो भी चीजें बदलती है वो असत्य है, इसीलिए इस संसार को मिथ्या कहा है। शास्त्रों में क्या कहते हैं? ये जगत मिथ्या है, असत्य है जगत। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बदलता रहता है, इसलिए असत्य कहते हैं। और परमात्मा सत्य है, ऐसा कहते हैं, गॉड इज ट्रूथ, परमात्मा सत्य है क्योंकि वो बदलता नहीं है। तो जो घटना घट गई वो सत्य हो गई, क्योंकि वही थी कल पहले भी और अभी भी वही हुई है। तो वो फिक्स है, वो सत्य है, वो नथिंग न्यू कर लेने का, उसको स्वीकार कर लेने का और प्रश्नों पर पूर्ण विराम लगा देने का। तो स्वीकार करना ये एक बहुत बड़ी बात है। इस बाबा के ड्रामा के ज्ञान के इस पॉइंट से हमें ये सीखना है कि हम स्वीकार करें जो हो चुका है उसको, जो नहीं हुआ है उसके लिए प्रयास करें, उसके लिए पुरुषार्थ करें, उसके लिए प्रयास करें, करते रहें। लेकिन वो चीज हो जाती है तो स्वीकार कर लें। रेलवे स्टेशन जाना है, 5 बजे ट्रेन निकलने वाली है, हम घर से 4 बजे निकले हैं, सफिशियंट टाइम है, हम पुरुषार्थ करके जा रहे हैं, रास्ते में गाड़ी बिगड़ गई, हमने गाड़ी छोड़ के रिक्शा ले लिया, पुरुषार्थ किया वहां तक पहुंचने के लिए, आगे गए ट्रैफिक जाम हो गया, रिक्शा भी उसमें फंस गया, हम पैदल चलने लगे कि 5 बजे तक हम पहुंच जाएं। वो पुरुषार्थ कर रहे हैं, पुरुषार्थ नहीं छोड़ देना है, चलो भाई बैठ जाओ, जो होगा ड्रामा में फिक्स है, सब हो जाएगा कल, वो नहीं, लेकिन पुरुषार्थ कर रहे, पुरुषार्थ करते रहना है। रेलवे स्टेशन पहुंचे, हमारे सामने ही ट्रेन निकल गई, प्लेटफॉर्म छोड़ दिया, बस हम सिर्फ 30 सेकंड लेट पहुंचे और ट्रेन हमारे सामने छोड़ दी। उस समय सत्य है, यही सत्य है स्वीकार कर लेने का। पुरुषार्थ पूरा किया लेकिन निकल गए, ये सत्य है, उसको स्वीकार कर लें। तो यहां पर हमें ड्रामा की इस सत्यता को, ड्रामा फिक्स है, इसको हमको समझना होगा और इसको समझ के इसको स्वीकार करके फुल स्टॉप लगाना होगा। जब ये फुल स्टॉप लग जाएगा तो क्यों क्या ये कई क्वेश्चंस जो है हमारे वहां पे पूरे हो जाएंगे और आत्मा प्रसन्न रह सकेगी। तो ड्रामा का यह एक स्तंभ है कि ड्रामा फिक्स है। ड्रामा का दूसरा स्तंभ है कि ड्रामा एक्यूरेट है। एक्यूरेट भी इंग्लिश शब्द है। एक्यूरेट का मतलब क्या है? एक्यूरेट का मतलब है जैसा होना चाहिए वैसा। सरल भाषा में कहें तो जैसा होना चाहिए वैसा है। अब जो चीज जैसी होनी चाहिए वैसी है तो फिर क्यों क्या के क्वेश्चन क्यों उठने चाहिए? हम समझाएं, अपने आप से बात करें कि जो चीज होनी चाहिए वैसी ही है तो फिर हम क्यों क्या के प्रश्न क्यों उठाते? तो एक्यूरेट है, और एक्यूरेट है तो फिर मस्त रहने। अभी ये शरीर पर आंखें यही होनी थी, अभी यहां होती तो ये यहां होती तो नहीं, ये एक्यूरेट है शरीर में यहां पर, तो प्रश्न उठने का सवाल नहीं है ना, ये एक्यूरेट है। लेकिन कई अति बुद्धिशाली लोग होते हैं, अति बुद्धिशाली, वो अति बुद्धिशाली लोग क्या करते हैं, उनके मन में प्रश्न उठता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। आपने मुरली ध्यान से सुनी हो तो बाबा कहते हैं कि कई बच्चे मुझे भी सजेशन देते हैं, बाबा आपको ऐसा करना चाहिए था, बाबा आपको वैसा करना चाहिए था, ऐसा मुझे भी सजेशन देते हैं। तो ये अति बुद्धिशाली आत्माओं की निशानी है। पर बाबा कहते हैं स्वीकार कर लो कि ये एक्यूरेट है और ये ठीक बना हुआ है। मुझे एक कहानी याद आती है इसमें। एक गांव में एक भाई रहता था, अपने आप को बहुत बुद्धिशाली समझता था कि भाई मेरे जैसा तो कोई नहीं है, इतना बुद्धिशाली, और जिसको भी देखता उसको कुछ करेक्शन देता था, आपको ऐसा करना चाहिए था, ये वैसा करना चाहिए था, ये आप वैसा करते तो बहुत अच्छा होता, उसमें आप ऐसा करते तो बहुत अच्छा होता, सबको करेक्शन, जिसको देखेगा कुछ न कुछ करेक्शन देगा, क्योंकि अपने को बहुत बुद्धिशाली समझता तो करेक्शन देता ही रहता था सब। लोग भी परेशान थे, लेकिन अब क्या करें, आदत है किसी की तो वो आदत से मजबूर थी। एक बार वो एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था, पैदल यात्रा करते थे, उस समय की बात, गर्मियों के दिन थे, सवेरे वो निकला जाने के लिए 11-12 बजे, बहुत धूप थी, चलते चलते थक गया, नहीं वो अभी निकला था तो जैसे ही गांव के बाहर निकला तो उसको एक किसान की झोपड़ी दिखाई दी, जैसे कच्चे घर बने होते हैं ना, ऊपर वो मिट्टी के केलू रखे हुए होते हैं और वो कच्चा घर था, और घर के बाहर थोड़ी सब्जियां उगाई हुई थी उसने, तो कुछ बेल चढ़ी हुई थी, बेलें भी चढ़ी हुई थी, बेल होती है ना अपने अलग अलग लौकी की ऐसी सब बेल चढ़ी हुई थी, तो वो छत के ऊपर एक कद्दू था, कद्दू होता है ना 5-7 किलो का, वो कद्दू एक जैसे वो था बेल पर लगा हुआ, वो ऊपर था उसके छत के ऊपर, तो एक मिनट के लिए वो खड़ा होके देखने लगा, तो देखते देखते उसको विचार आया ये भगवान की प्लानिंग है ना ठीक नहीं है, भगवान ठीक से प्लानिंग नहीं करता है। अब ये बेल देखो कितनी पतली सी बेल है, इतनी पतली कि ये खुद भी खड़ी नहीं रह सकती, मतलब इसको भी खड़ा रहना है तो किसी का सहारा लेना पड़ेगा तब ये खड़ी रह सकती है बेल, और इतनी पतली बेल पर इतना बड़ा कद्दू, अब कैसे रहेगा उस पर ही। ये प्लानिंग जो है ना भगवान का ठीक नहीं है, ये तो किसी बड़े पेड़ पर लगना चाहिए, ये ठीक नहीं, भगवान का भी पता नहीं कौन वहां प्लानिंग करता है, कैसे होता है वहां, ठीक नहीं, ऐसे ऐसे सोचते सोचते, अब भगवान को कहने तो कहां जाए, मन में ही सोच रहा था, तो सोचते सोचते वो आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, तो 11-12 बजे वो धूप हो गई थी, उसको प्यास भी लगने लगी थी, थोड़ा थक भी गया था, तो सोचा कि अगर कहीं ठंडा पानी मिल जाए और छाया मिल जाए तो मैं विश्राम कर लूं। थोड़ा आगे गया तो दूर से एक पेड़ दिखाई दिया, तो उसके नजदीक गया तो कुआं भी था वहां एक, तो कुएं में से थोड़ा पानी निकाला, ठंडा पानी था, शीतल पानी था, पानी पिया और पेड़ की अच्छी छांव थी तो सोया थोड़ी देर में सो जाऊं, टॉवेल बिछाया और जैसे ही सोया तो नजर ऊपर गई, नजर ऊपर गई तो वो बेल फल का जो पेड़ होता है ना, बेल, बेल का पेड़, बेल पत्र वाला, तो वो बहुत बड़ा पेड़ था, पुराना पेड़ था, बहुत बड़ा पेड़ था और ऊपर बेल फल लगे हुए थे एप्पल के आकार के, आपने तो देखे ही होंगे बेल फल, वो बेल फल थे, तो सोते सोते उसकी नजर गई तो कहा देखो फिर ये भगवान की प्लानिंग, देखो ये कर दी ना गलती, यहीं पर भी गलती कर दी उन्होंने कि इतना मोटा पेड़ जो मैं अपने हाथ में भी नहीं भर सकता, इतना बड़ा इसका तना, इतना बड़ा पेड़ इसका, और इसके ऊपर देखो फल इतना से लगाए, ये भी कोई बात कि इतना, ये यहां पे कद्दू होना चाहिए था तो वहां फल होना चाहिए था और उसकी जगह ये लगा दिया, ये भगवान वाला तो ठीक नहीं है मामला। खैर सोचते सोचते नींद आ गई, हवा चल रही थी अच्छी तरह से, हवा चली तो ऊपर से एक फल गिरा, फल वो बेल गिरा सीधा यहां पे, अब ऊपर इतनी ऊपर से गिरा और इतना तेज गिरा तो बेहोश हो गया वो तो मेरे भाई, पड़ा था, यात्री वहां से निकल रहे थे तो उन्होंने देखा ये तो कोई बेहोश पड़ा है, तो कुएं में से पानी निकाला, उसको पानी छांटा, ऐसे थोड़ा हिलाया डुलाया तो उसको होश आया, होश आया तो देखा मैं जिंदा हूं कि मर गया, ऐसे चुटकी भर के देखा कि जिंदा हूं कि मर गया, तो क्या ये हुआ क्या मेरे को, इतना कहां से लग गई, ऐसी कैसे लगी और क्या हो गया ये, तो नजर दौड़ाई तो देखा वो बेल फल पड़ा था बाजू में, तो कि अच्छा इस पर से ये गिर गया था, ये यहां गिरा और ये हो गया और इसलिए मैं बेहोश हो गया। फिर उसको विचार आया कि ऊपर कद्दू होता और वो गिरता था, तो वो यहाँ गिरता तो क्या हाल होता मेरा, तो फट ही जाता सिर, तो फिर तो मैं सीधा उसी के पास जाता प्लानिंग पूछने के लिए, यार रास्ता ही नहीं है। भगवान की प्लानिंग एकदम एक्यूरेट है, एकदम एक्यूरेट है, उसकी प्लानिंग में कोई गड़बड़ नहीं है। तो कई बार क्या होता है, कई बार बाबा जो कह रहे हैं ना वो हमको सीधा सीधा समझ में नहीं आता है, अब वो भगवान है वो कह रहा है वह सत्य है, उसको हम स्वीकार करें, उसमें हम निश्चय करें, पर वो निश्चय करके हम आगे बढ़े, लेकिन वो सीधा समझ में नहीं आता है। जब कोई थोड़ी जीवन में ठोकर लगती है ना, जब ऐसा कुछ अनुभव होता है ना, तब लगता है कि हाँ ये बात तो बाबा ने सही कही थी, ऐसा ही हमको मानना चाहिए था, वो तब फिर बाबा के वो पॉइंट याद आते हैं कि नहीं नहीं हाँ ये मुरली में ये पॉइंट आई थी और ये पॉइंट तो एकदम ठीक है, हमको इसको स्वीकार करना चाहिए। तो ड्रामा की ये जो दूसरी विशेषता है कि ड्रामा एक्यूरेट है, तो फिर हमें भी इसको स्वीकार करना है और एक्यूरेट समझ कर क्यों क्या कैसे इनके प्रश्नों से हमको पार हो जाना है और सदा खुश रहना है, क्योंकि इसी में खुशी कम हो जाती है ना, यही चीज तो नहीं नहीं इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको वैसा नहीं करना चाहिए था, ये आप ऐसे करते आप वैसे करते, मतलब इसी में फिर जो है मन जो है एक लंबी क्यू लग जाती है और इस लंबी क्यू में खुशी कहीं खो जाती है। तो अभी अपनी खुशी अपने पास रखें, और साधन है, बाबा ने साधन दिया हुआ है अपनी खुशी अपने पास रखने का, तो उसके द्वारा हम ये करें। अभी ड्रामा का तीसरा पिलर, तीसरा जो है वो है ड्रामा कल्याणकारी है। भगवान को भी क्या कहते हैं, शिव को, शिव को भी कल्याणकारी कहते हैं, और शिव ने कहा है कि ड्रामा भी कल्याणकारी है। कल्याणकारी का अर्थ क्या होता है, कल्याणकारी एक बहुत बड़ा शब्द है, बहुत बड़ा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंक्लूसिव वर्ड है, इंक्लूसिव मतलब उसमें सारी पॉजिटिव चीजें आ जाती हैं। इस कल्याणकारी शब्द में सारी पॉजिटिव चीजें आ जाती है, जिसमें भला हो, अच्छा हो, किसी का अच्छा हो जाए, ये सब चीजें उसमें आ जाती है कल्याण में, तो ये ड्रामा कल्याणकारी है। अब हम बाबा ने कहा कल्याणकारी है, कई बार कहा है बाबा ने, मूल्यों में लिखा हुआ है, सब कह के ड्रामा कल्याणकारी है, परंतु जब कोई घटना घटती है तब कहते हैं कि ये तो ठीक नहीं हुआ हमारे साथ, जब इन्होंने सारी उम्र पुण्य किए फिर ये कैसा इनके साथ हो गया, ऐसा तो इनको नहीं होना चाहिए था, ऐसा इनके साथ नहीं होना चाहिए था, तो इस प्रकार से सब प्रश्न उठ जाते हैं कि इसमें क्या कल्याण छुपा हुआ, कि इसमें क्या ये हुआ है, ये तो इसके साथ बुरा हुआ है। तो ये चीज जो है यहाँ पर हमको समझने जैसे कि ड्रामा कल्याणकारी कैसे है। बहुत बार ऐसा होता है कि इमीडिएट उसमें कुछ नुकसान होता है, जो हुआ है ना उसमें इमीडिएट कुछ नुकसान होता है, बहुत बार इमीडिएट वो चीज होती है जो हमें प्रिय नहीं है, हम कुछ दूसरा रिजल्ट चाहते थे और हो कुछ दूसरा जाता है, तब हमें हमारी खुशी कम हो जाती है, तब हमको अच्छा नहीं लगता है, कोई हमारा कहना नहीं मानता है तब भी ऐसा हो जाता है, ये नहीं कुछ घटना ऐसी घट जाती है तब भी हमें उसमें मजा नहीं आता है, हमारी खुशी गायब हो जाती है, उस समय हमें धीरज रखना पड़ता है और पॉजिटिव दृष्टि के साथ उस कल्याण को देखना पड़ता है उस घटना में, कि इसमें क्या कल्याण समाया हुआ है। जैसे आप दूध लेके आए, उसमें घी समाया हुआ है, पर दिखाई थोड़ी देता है कि इस दूध में घी समाया हुआ है। वो तो जब एक प्रोसेस होती है उसके बाद घी सामने आता है। तो ऐसे ही ड्रामा की हर घटना में, स्पेशली हम बाबा के बच्चों के लिए, कल्याण समाया हुआ है। और उसका एक बड़ा तरीका समझने का है तो ये है कि इस कलयुग के परिवर्तन के बाद कौन सा युग आने वाला है? सतयुग आने वाला है, निश्चय है ना? उसमें तो सबको निश्चय है ना कि भाई इस अंधेरी रात के बाद सवेरा आने वाला है और वो सतयुग का सवेरा होगा, ये तो निश्चय है। सतयुग कैसा युग है? बहुत अच्छा युग है, सबका, उसमें सभी का भला ही होने वाला है। जो भी सतयुग में आएंगे सब अच्छे ही होंगे, सबका भला होने वाला है, सबका कल्याण है, सब खुश रहने वाले हैं वहां। तो हम उस युग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब जरूर कल्याण हो रहा है, तभी तो उस युग की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। ये एक बड़ी बात है समझने के लिए कि हम उस युग में जा रहे हैं तो मतलब आगे ही जा रहे हैं ना, उसकी तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं, तो जरूर इसमें कुछ कल्याण समाया हुआ है। एक रियल घटना बताता, यूपी में एक जगह अपने को रिट्रीट सेंटर की जगह लेनी थी, जगह फिक्स हो चुकी थी, 8-10 साल पहले फिक्स हो गई थी, सरकार से लेनी थी, एप्लीकेशन दिया था और बहुत बड़ी रकम एडवांस भी सरकार ने मांगी थी, जमा करा दी थी और बस एलोटमेंट का इंतजार कर रहे थे कि भाई कब एलोटमेंट हो तो रिट्रीट सेंटर बनावे। वो रमेश भाई जी के समय वो सौदा हो चुका था, सरकार को दे चुके। फिर रमेश भाई जी अव्यक्त हो गए, जमीन मकान का सारा कारोबार की जवाबदारी यज्ञ ने हमें दी फाइनल करने के लिए। एक दिन बहन जी का फोन आया कि ललित भाई वो जो हमने एप्लीकेशन दी हुई थी और डिपॉजिट दी हुई थी तो अब सरकार की तरफ से लेटर आया है कि वो हमें अलॉट करने को तैयार है और उसका करीब 13-14 करोड़ रुपया भरने का होता है। मैंने कहा इतनी ज्यादा रकम? तो कि हाँ, उनकी अभी की वैल्यूएशन के हिसाब से इतना होता है। हमने कहा भाई साहब ने इतनी की छुट्टी दी थी आपको लेने की? कि नहीं, उस समय तो कम थी इसकी रकम जब हमने एप्लीकेशन दी थी 8-10 साल पहले, लेकिन उसके बाद 2 सरकारें बदल गई, वहां पर सरकारों ने सरकारी जमीन के वैल्यूएशन को जो है वो चेंज करा दिया और अब जो है इतना आएगा। मैंने कहा बहन जी ये तो बहुत ज्यादा है। तो कहा हाँ भाई साहब ज्यादा तो है, लेकिन यहां तो क्या है, यूपी में एक जमीन 3-3 लोगों को बेच देते हैं प्राइवेट वाले और लोन ले लेते हैं, हमको कुछ पता नहीं होता है, उनका टाइटल क्लियर नहीं होता है, तो प्राइवेट जमीन लेना बहुत जोखिम वाला है, तो प्राइवेट जमीन में हम नहीं जा सकते, हमको सरकारी जमीन ही लेनी पड़ेगी। हमने कहा ठीक है सरकारी लेनी, लेकिन इतनी महंगी जमीन है ये तो कि अभी और कोई रास्ता नहीं, ऐसा है तो आप एक बार चक्कर लगाओ यहाँ पे और आप आके खुद देखो और फाइनल करो। और मैंने कहा फंड हमारे पास तो, कि वो तो हम कैसे भी करके करेंगे, सरकार से टाइम मांगेंगे, लेकिन ये लेना है। मैंने कहा ठीक है मैं आता हूं, लेकिन मैं तभी आऊंगा जब आप दूसरी प्राइवेट भी 2-4 जमीनें देख के रखोगे, ताकि मैं एक ही चक्कर में सब देखूं और मुझे पता चले। मैं गया, फ्लाइट से सीधा ही उस सरकारी जमीन पर गए। मैंने कहा चलो कार वहीं लो सीधा। देखा तो थोड़ी जमीन टेढ़ी बाकी थी, तो हमको तो पसंद नहीं आई। तो हमने कहा नहीं, हमें तो ये जमीन पसंद नहीं है, क्योंकि जो आप बनाना चाहते हैं वो यहां ठीक से नहीं बनेगा। तो कि भाई साहब फिर तो कहां मिलेगा क्या? मैंने कहा था ना आप एक दो और देख के रखना, तो आपने देखी है? तो हाँ देखी है 2-3 जमीन। ठीक है हमको ले जाओ। हमने और वो जो प्राइवेट जमीनें देखी थी वो भी मुझे दिखाने ले गए, देखा तो टोटल 1 वो सरकारी और 2 दूसरी जमीनें देखी। मैं देखता गया, कोई ओपिनियन नहीं दिया गया, सब क्या रेट में मिल रहा है, कितना दूरी है, सब वो देखा। फिर शाम तक वापिस सेंटर पर पहुंचे, फिर बहन जी कहे भाई सब क्या हुआ, क्या करना है अभी? मैंने कहा दो मिनट बैठते हैं सब। दो चार भाई भी थे वहां के मुख्य भाई, उनको भी बिठाया, बैठे हम। मैंने कहा एक कागज पेन लाओ। कागज पेन लाके उसका चार्ट बनाया, सरकारी जमीन की क्या विशेषता, प्राइवेट वन की, प्राइवेट टू की क्या विशेषता, ऐसा पूरा चार्ट बनाया। कितने कितने रुपये में मिल रही है, कितनी दूरी पर है, क्या है, ऐसा पूरा चार्ट बना के उनको बताया। मैंने कहा मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, ये चार्ट आप पढ़ लो और अभी आप ही कहो कि क्या करना है। तो उन्होंने पढ़ा तो सरकारी जमीन से ज्यादा एरिया, ज्यादा बड़ी जमीन वो 5 करोड़ में मिल रही थी, उससे भी ज्यादा बड़ी सरकार से, और बहुत अच्छा उसका जो है साइज भी अच्छा था, सुहा वो भी मिल रही थी। एक 6 करोड़ में मिल रही थी, एक 5 करोड़ में मिल रही थी, और डिस्टेंस भी उतना ही था सेंटर से जितना इसका था। उन्होंने जब खुद देखा तो कहा कि भाई साहब ये बात तो ठीक है आपकी कि ये इतने में ही मिल रही है, लेकिन वहां हमने 90 लाख एडवांस दिया है, उसका क्या होगा, वो तो सरकार वापिस नहीं देगी। इनका चलो नहीं देगी तो आप ये समझो कि वो भी इसकी कॉस्ट में आ गई, तो भी कितना हुआ 6 करोड़ में, तो भी इतनी बड़ी जमीन मिल रही है आप, वहां आपको 14 देना है। बड़ी मुश्किल से उनका मन कन्विंस हुआ कि हाँ ये हमको नहीं लेना है और प्राइवेट में जाना है। तो मैंने कहा इसके सब पेपर मंगाओ और हम सब देखेंगे। फिर उनको ही वो पसंद नहीं आई, फिर उन्होंने दूसरी देखी, फिर मैं दूसरी बार गया, उन्होंने पसंद कर ली थी कि ये भाई साहब डन है और आपके हाथ से आप एडवांस दे दो इनको, ये सब कर लो। मैंने कहा ठीक है, मैं जमीन के अंदर जाके देखूंगा पूरा। तो बोले खेत है इसमें तो अभी वो कांटे भी है, फसल भी हुई हुई है, आप यहां बाहर से पूरा देख लीजिए। मैंने कहा नहीं, मैं जब मधुबन से यहां तक आ गया जिसके लिए आया है वो तो मैं पूरा देखूं। तो मैं गया अंदर, पूरा चक्कर लगाया, क्योंकि मैं तो हूं ही किसान हूं, मेरी 16 बीघा जमीन है, मैं तो बचपन से खेती की है, तो मुझे तो सब अनुभव है। तो मैं तो गया सब अंदर कुछ देखा, तो जमीन के बीचों बीच अंदर एक बड़ा चबूतरा बना हुआ था और एक आदमी वहां काम कर रहा था बाजू में, कुछ वो फसल निकाल रहा था, सब कर रहा था। तो जो दलाल था साथ में था, तो मैंने कहा ये क्या है चबूतरा? तो वो दलाल धीरे से बोला कि ये जो मालिक है ना किसान, इसके पिता की समाधि है। उनका इसका पिता की समाधि है तो ये हमको लेने के बाद निकालने देगा? तो कि नहीं, ये निकालने तो नहीं देगा, पर ये साल में एक बार आके इस यहाँ पूजा अर्चना जो इसकी है वो करनी पड़ेगी और ये करेगा। मैंने कहा जमीन के बीचों बीच समाधि हम रख के हम क्या करेंगे? हमको जो काम करना है वो कैसे होगा इसमें? वो तो कुछ हो नहीं सकता। खैर वहां से हम निकले, बेन जी बोले हम 3 बार आए यहां, हमको तो कुछ दिखाई नहीं दिया, आपको कहां से दिखाई दी? मैंने कहा ये आपके सामने है ना, मैंने तो नहीं बनाई ये सब है। खैर वो छोड़ी, फिर और चौथी देखी, फाइनल हुआ, फाइनल कर दिया उसको, सब अच्छा हो गया। अब जो है उसकी फाउंडेशन की तारीख बेंजी ने मुझे किया, फोन किया कि इसका फाउंडेशन स्टोन लगाना है और इस तारीख को है और आप आना। सितंबर एंड की कोई तारीख थी, ये 4 साल पहले की बात है, तो सितंबर एंड की तारीख थी, 4 या 5 साल पहले की बात है। तो मैंने कहा ठीक है आ जाऊंगा, कि अपनी दिल्ली से ब्रिजमोहन भाई जी आ रहे हैं, आशा बेन जी आ रहे हैं और इतने लोग भी आ रहे हैं और प्रोग्राम अच्छा रखेंगे और आप आ जाना। ठीक है आ जाएंगे, टिकट भी बुक कर दिया, फ्लाइट टिकट भी बुक हो गई। प्रोग्राम के 4 दिन पहले फोन आया बेन जी का कि भाई साहब यहां तो बहुत बारिश हो रही है और इतनी बारिश हो रही है कि अपना जो खेत लिया है उसमें एक एक दो दो फीट पानी भर गया है, और वो जो मंडप वो डेकोरेटर है टेंट वाला वो कह रहा है कि इतनी बड़ी जमीन में 3-3.5 एकड़ जमीन, कि उतनी बड़ी जमीन में टेंट लगाने हो तो मुझे कम से कम 7 दिन चाहिए तब मैं टेंट लगा सकता हूं, और एकदम सूखी जमीन चाहिए, यहां तो पानी भरा हुआ है, यहां तो टेंट नहीं लग सकता। तो कि भाई साहब ये तो प्रोग्राम नहीं हो सकता, ऐसी हालत हो गई। मैंने कहा तो इसमें चिंता क्यों करते हो, आपके हाथ की तो बात है नहीं है, ये तो अब ड्रामा में जो है कल्याणकारी है, इसी में आप संतोष मानो, फिर आगे देखेंगे। भाई साहब सबकी फ्लाइट टिकट हो गई, कार्ड छप गए, कार्ड बांट दिए, प्रोग्राम हो गया, सामान सब आ गया, ये हो गया वो हो गया, इसमें क्या मतलब थोड़ा रंज होता है ना, इतना बड़ा प्रोग्राम था तो थोड़ा मन में रंज हो रहा था। मैंने कहा बहन जी आप निश्चिंत रहो, रामा कल्याणकारी है, कुछ भला है, आप फिलहाल इसको पोस्टपोन कर दो, सबको फोन कर दो। अब और कोई रास्ता भी नहीं था तो उन्होंने फोन करके उसको पोस्टपोन कर दिया। 8-10 दिन बाद वो मधुबन आए। मधुबन जब आए तो दादी जानकी जी से मिले और दादी को समाचार सुनाया कि दादी ऐसे रिट्रीट सेंटर के लिए बड़ी जमीन दी है, दादी गुलजार जी ने यहाँ यूपी में और विशेष लखनऊ में सेवा की है और दादी जी अगर वहां के फाउंडेशन में आप पधार सको तो बहुत सेवा हो जाएगी और ये सब हो जाएगा। तो दादी ने हंसाबेन को बुलाया, कैलेंडर देखा और कहा कि एक डेट दे दी, अक्टूबर 7 दिन बाद की डेट दी, 8 दिन बाद की, कि ठीक है दादी इस तारीख को आ सकती है। वैसे दादी स्पेशली चार्टर्ड फ्लाइट से ही सब जगह जाती थी, लेकिन वहां पर अहमदाबाद से डायरेक्ट फ्लाइट थी तो दादी ने कहा कि मैं अहमदाबाद से डायरेक्ट फ्लाइट में आ जाऊंगी, चार्टर्ड फ्लाइट की भी जरूरत नहीं। तो बहन जी दौड़ते दौड़ते मेरे पास आए, ललित भाई दादी ने हाँ कर दी फाउंडेशन के लिए। मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात, दादी ने हाँ कर दी। तो कहा लेकिन 7 दिन ही है। मैंने कहा दादी ने हाँ कर दी मतलब सब हो जाएगा, आप तो पहुंचो, टीम को लगाओ काम पे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। वो गए, सब टीम को तैयारी तो पहले से की हुई थी, उसी को रिवाइज किया, बहुत अच्छा हो गया प्रोग्राम में। चीफ मिनिस्टर आए सेंटर पर, 1 घंटा दादी के साथ व्यक्तिगत मिले और अच्छी तरह से हुआ। दूसरे दिन प्रोग्राम में डिप्टी चीफ मिनिस्टर, 4 मिनिस्टर, 4 IAS ऑफिसर आए, 4-5 हजार की सभा हुई, बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम हो गया। मैं भी दादी के साथ ही फ्लाइट में गया था, बहुत अच्छा प्रोग्राम हो गया। जब प्रोग्राम पूरा हुआ तो हम भोजन कर रहे थे, बहन जी भी साथ में बैठे थे, तो मैंने कहा बहन जी हो गया प्रोग्राम अच्छा? तो कि हाँ बहुत अच्छा प्रोग्राम हो गया। मैं बहुत खुश थे बहन जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम हो गया। मैंने कहा वो बारिश आई थी और वो जो कैंसल हो गया था और उसका क्या, वो अच्छा हुआ, वो कल्याणकारी हुआ, वो कैंसल हो गया ना वो अच्छा हुआ, वो कल्याणकारी, वो ड्रामा कल्याणकारी था। देखो वो टाइम लगा ना उस चीज को सामने आने में, लेकिन बाबा ने तो कहा हुआ है, जब बाबा ने कहा हुआ है तो हमको उसमें से ढूंढना है और उसमें से ढूंढ के निकालना है कि कल्याणकारी, और नहीं दिखाई दे तो भी चिंता नहीं करना है, लेकिन धीरज रखना है। धीरज रखेंगे तो वो कल्याण हमारे सामने आएगा, अवश्य आएगा, पर धीरज रखें। चौथा ड्रामा का चौथा पिलर है, चौथी विशेषता है कि ड्रामा न्यायकारी है। न्यायकारी मतलब जस्टिफिएबल है, ड्रामा किसी के साथ अन्याय नहीं करता है। माना हमारे साथ या किसी के भी साथ जो कुछ हो रहा है वो हमारे कर्मों का फल है। जो भी हो रहा है हमारे कर्मों का ही फल है, चाहे वो कर्म हमने कल किया है, 1 साल पहले किया है, 10 साल पहले किया है या पूर्व जन्म में किया है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, संस्कारों के रूप में वो कर्मों का फल साथ में आता है और उसका फल मिलता है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे परिवार वाले के साथ ही ऐसा क्यों हुआ, हमने तो कभी किसी का बुरा किया ही नहीं फिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, ये प्रश्न कई बार मन में उठते हैं और ये प्रश्न हमारी खुशी को उड़ा ले जाते हैं। जैसे आरती की थाली में से कपूर कैसे उड़ जाता है, ऐसे खुशी उड़ जाती है जब ऐसी बातें सामने आती है। लेकिन ड्रामा न्यायकारी है, ये विशेषता याद रखें। और हम ये समझते हैं कि हम फिजिकली कुछ कर्म कर रहे हैं वही कर्म है और उसी का फल मिलता है, नहीं उसका तो मिलता ही है, लेकिन जो हम बोल रहे हैं ये भी कर्म है और इसका भी फल मिलता है, और इससे भी ज्यादा जो हम सोच रहे हैं वह सबसे पावरफुल कर्म है और उसका भी बहुत फल मिलता है। तो बोलना, सोचना, करना तीनों ही कर्म है और तीनों का ही फल मिलता है। तो जो हमारे साथ हो रहा है वह न्यायकारी है, हमारे किसी कर्मों का फल है, उसमें हमको दुखी होने की जरूरत नहीं है। बीमार होते तभी बाबा मुरली में क्या कहते हैं, भाई फ्रूट खा लो और चिंता नहीं करो, उसको भूल जाओ, स्वीकार कर लो उसको, ये नहीं करो, चिंता में नहीं जाओ, फ्रूट खा लो। मैं तो ये कहता हूं कि बीमार हुए तो कोई हमारा हिसाब किताब चुक तो हो गया, किसी का लेना देना बाकी था पूरा। जब किसी का लेना देना पूरा होता है तो खुशी होती है ना, बोझ उतर गया, तो ऐसा कुछ बात होती है तो बोझ उतर गया, यही समझना है कि बोझ उतर गया, ये समझ के खुश होने का, क्योंकि बिना कारणे कुछ नहीं होता है, अकारणे कुछ नहीं होता है, हर घटना के पीछे कोई न कोई पूर्व घटना हुई है, उसका ये फल मिल रहा है। इसलिए ड्रामा की इस चौथी विशेषता को भी याद रखने का। तो ड्रामा की इन चार विशेषताओं को अगर हम स्मृति में पक्का रखेंगे, याद तो है सबको, मैंने कोई नई बात नहीं सुनाई आपको, याद है, लेकिन स्वरूप बनना है, और स्वरूप प्रैक्टिकल लाइफ में बनना पड़ता है। जब हमारे साथ डेली कुछ घटनाएं घट रही है तब उस स्वरूप को हमें याद रखना है, इन बातों को याद करके हमको आगे बढ़ना है। तो कौन कौन सी चार विशेषताएं, पहली ड्रामा फिक्स है, दूसरा ड्रामा एक्यूरेट है, तीसरा ड्रामा कल्याणकारी है, चौथा न्यायकारी है। शील दीदी जी, अब आपके पास कोई प्रश्न लेके नहीं आएंगे, आपका टाइम बच जाएगा, अब आपका टाइम बच जाएगा, अभी सबको स्वरूप हो गया है एकदम कि ये ड्रामा की चार विशेषताएं पक्की है, कोई प्रश्न नहीं, सबको प्रश्नों का उत्तर मिल गया है, मिल गया है ना प्रश्नों का उत्तर, बस इतना याद रखेंगे तो सब अच्छा हो जाएगा। तो हमारी यही गुड विशेष है कि आप जोधपुर की इस चैतन्य फुलवारी के रूहानी फूल, खुशबूदार फूल, सदा आपका चेहरा खिला रहे। कैसा खिला रहे, आपको पता है कि घड़ी में, जो न्यूज़पेपर में घड़ी की एडवर्टाइजमेंट आती है, कोई भी घड़ी की एडवर्टाइजमेंट आती है तो उसमें कितना बजा हुआ होता है, 10:10 होता है उसमें हमेशा, क्योंकि वो उसका स्माइलिंग फेस होता है। तो आपकी सदा आपके चेहरे पर स्माइल रहे, सदा खुशी आपकी दासी बनकर, साथी बनकर आपके साथ में रहे, यही हमारी गुड विशेष है। और हम विशेष हमारी आदरणीय शील दीदी जी को और सभी साथी बहनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जो मुझे बहुत दिल से निमंत्रण देके दीदी ने बुलाया और हमारे 84 जन्मों के संबंधियों से मिलाया, 84 जन्मों के संबंधी है ना सभी पूरा, तो उनसे मिलने का सौभाग्य दिया, तो हम दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम कई बार जोधपुर आए हैं क्योंकि यहाँ यज्ञ का, इनकम टैक्स का कारोबार आदि सब कुछ यहाँ होता था, तो यहाँ आना हुआ है। प्रायः सरदारपुरा सेंटर पर आते थे, वही रहते थे, यहाँ पहले वाले सेंटर पर भी हम आए हुए हैं, लेकिन इस नए एकदम फरिश्ता स्वरूप भवन, देखो व्हाइट 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 सब कुछ है, तो इतना सुंदर भवन बना है, बहुत ही सुंदर भवन बना है और बहुत फटाफट बना दिया है। तो आप सबको बाबा ने इस जो भवन की सौगात दी है, इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो, अभिनंदन हो। ओम शांति। संकल्प करने का, यहाँ हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, केवल संकल्प करने की जरूरत है, बस संकल्प करें, बाकी सब जिसका काम है वो करेगा, संकल्प करें। ओम शांति।